शब्दार्थ बोलिए। तस्मात अतः युवां आप दोनों ग्राम में पशु हो, सूकर या कूकर जैसे पशु का मम मुझे मूढ़ धिया अत्यंत मूर्ख प्रभु ये दोनों स्वामियों अंधे गहरे तमसी अंधकार में मग्नस मग्न रहने वाले का ज्ञान दीप ज्ञान का प्रकाश उदीर्यताम प्रकाशित कीजिए। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। आप दोनों महापुरुष हैं अतः मुझे वास्तविक ज्ञान देने में समर्थ हैं। मैं अविद्या के अंधकार में डूबा रहने के कारण सूकर अथवा कूकर जैसे ग्राम्य पशु के समान मूढ़ हूं अतः मुझे उबारने के लिए ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करें। बहुत ही मार्मिक श्लोक है। तात्पर्य पढ़ने से पहले हम श्लोक के शब्दों को समझेंगे। सबसे पहले शब्द क्या है? तस्मात। तस्मात का मतलब क्या है? इसलिए, है ना। इसलिए ये शब्द क्यों आया है, मतलब पिछले जो श्लोक हैं उनसे कुछ संबंध है इसलिए, है ना। तो पिछले श्लोकों में उन्होंने मतलब बताया है कि आप लोग जो है कौन है, ज्ञान संपन्न है, अवधूत के वेश में आप आए हुए हैं और मेरे जैसे जो पशु की बुद्धि जैसे व्यक्तियों का जो है आप बोध देने के लिए, चेतना देने के लिए, ज्ञान देने के लिए आप आए हुए हैं। और आप कौन हैं तो कई नाम उन्होंने बोले हैं, उन नामों में ये हैं भी, है ना। कई नाम बोले हैं जिनमें से दो नाम वो सही भी आ गए हैं, है ना। कौन है वो दो? नारद और अंगिरा। तो उसमें जो है नारद दूसरे नंबर में और अंगिरा चौथे नंबर में उन्होंने बोले हैं और कई नाम बोले हैं, आप गिन सकते हैं कितने नाम बोले हैं, है ना। तो फिर उन्होंने कहा इसलिए, है ना, अब जो भी हैं आप, लेकिन आप युवाम, युवाम ये शब्द जो है संस्कृत में होता है, है ना। तो संस्कृत भाषा जो है बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी सूक्ष्म है। तो आप दोनों के लिए जो है एक शब्द आता है, अंग्रेजी में आता है यू बोथ, हिंदी में आता है आप दोनों, संस्कृत में युवाम, त्वम युवाम योयम, त्वम मतलब एक वचन, युवाम द्विवचन, योयम बहुवचन, है ना। तो संस्कृत जो है मतलब बड़ी संपन्न भाषा है, एक एक शब्द तो जो है कई अर्थ निकलते हैं। तो युवाम आप दोनों, तस्मात युवाम ग्राम्य पशु, ग्राम्य पशु यानी मैं हूं ग्राम्य पशु, गांव का पशु मैं, है ना। मैं मूढ़ है दिया प्रभु, तो मैं जो है मूढ़ है बुद्धि वाला हूं। और प्रभु ये शब्द भी द्विवचन में है, प्रभु छोटा ऊ की मात्रा होती एक वचन, हम बोलते हैं प्रभु प्रभु है, तो एक वचन में होता है प्रभु, और जब बड़ा ऊ की मात्रा होगी तो प्रभु ये द्विवचन में होता है संबोधन में। अगर हमने प्रभु कहा तो दो भक्तों के लिए हो गया प्रभु, एक भक्ति के लिए प्रभु, इतनी सूक्ष्म है ये, बहुत सूक्ष्म भाषा है ना। और जो है संस्कृत भाषा में ऐसा भी है, अगर आपने प्रभु कहा तो वो शिकायत करेंगे आपने प्रभु कैसे कहा, आप दो लोग हैं तो आपने प्रभु कैसे कहा, दो लोग हैं तो प्रभु बोलो। इतना तो कोई नहीं देखता है कि प्रभु बोले या प्रभु बोला, सब एक ही है, क्या फर्क पड़ता है। प्रभु द्विवचन में प्रभु, अंधे तमसी मग्नस, अंधे तमसी अंधकार में, तमोगुण तम का मतलब है अंधकार और फिर अंध मतलब जो आंखों को अंधा करने वाला है, उसमें मैं डूबा हुआ हूं, है ना, घोर अंधकार में, गहरे अंधकार में, अंधे तमसी, है ना, गहरे अंधकार में मैं डूबा हूं। ज्ञान दीप उदीर्यताम, ज्ञान के दीप को जलाइए। इससे भी पता चलता है ज्ञान दीप आपके हृदय के अंदर है लेकिन बुझ गया है ना, पहले से ही ज्ञान दीप आपके हृदय में है। मम का मतलब मेरा, मम ज्ञान दीप उदीर्यताम, तो मेरे हृदय का जो ज्ञान का दीपक है वो क्या हो गया है, बुझ गया है। कैसे बुझ गया है, विषय भोग की हवा से बुझ गया है ना, तो उसको जो है आप जलाइए। तो इससे भी पता चलता है मम ज्ञान दीप उदीर्यताम, मेरा मेरे ज्ञान दीप को आप जलाइए। और जिसका ज्ञान दीप जला है वो दूसरे ज्ञान दीप को जला सकता है कि नहीं, एक दिया से दूसरा दिया जलता है ना, तो जिसका ज्ञान दिया जला हुआ है उसके संपर्क में आप आते तो आपका भी ज्ञान दिया जल जाएगा, है ना। ये विधि है ना, तो संपर्क में आना जरूरी है ना। एक जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त व्यक्ति है तो उसके संपर्क में आप आते हैं तो आपको भी आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है, इन संपर्क में आने की जरूरत है। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है, प्रभुपाद क्या कहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। क्या विधि, विनम्रता है ना, तद्विधि प्रणिपात है ना, प्रणिपात, तो प्रणिपात का मतलब शरीर से भी प्रणिपात करना है, यानी नीचे आप अपने को नीचा करिए है ना, शरीर से भी जो ज्ञान दे रहा है उसको आप ऊपर बैठा रहे हैं आप नीचे बैठे हैं, ये भी एक विधि है प्रणिपात, शरीर शारीरिक रूप से, और मानसिक रूप से भी आप अपने को बहुत नीचा समझें। तो उन्होंने अपने को क्या कहा है, मैं ग्राम में पशु हूं, गांव का पशु हूं, गांव का पशु, तो मतलब मैं बहुत अज्ञान में हूं। और गांव का जो पशु होता है उसको स्वतः कभी ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है, उसको तो जो मालिक है तो वो जब उसको चलाएगा और कहाँ चलना है कैसे चलना है तभी वो चल पाएगा, उसको अपना अपनी सुरक्षा का भी कुछ ज्ञान नहीं है। तो इस तरह से जो है समर्पण करना है, ये विधि है विनम्रता, सदविधि प्रणिपात है ना, परिप्रश्न है ना, और परिप्रश्न भी है, प्रश्न भी है, जैसे इन्होंने प्रश्न किया ये भी जरूरी है, ये नहीं कि प्रणाम प्रणाम करके बैठे हुए हैं तो उपदेश नहीं मिलेगा, आपको जो है प्रश्न करने की जरूरत है, परिप्रश्न है ना, सेवा, और इसके साथ में सेवा भी कि मैं क्या करूं, मैं आपकी क्या सेवा करूं, तो ये जो है विधि है। यहां पर ऊपर लिखते हैं ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। देखिए इस श्लोक का जो है अभ्यास बहुत बहुत शक्तिशाली होता है। इस श्लोक में जो भाव है अगर आपने जो है इसके भाव को समझ लिया तो आप जो है इस श्लोक का भी अगर आप बार बार अभ्यास करते हैं तो भाव आता है, ये बहुत मतलब इसमें शक्ति होती है, इस श्लोक में बड़ी शक्ति है। और अगर आप नहीं भी जानते हैं श्लोक, जैसे प्रभुपाद ने विधि बनाई है कि आपको श्लोक का अर्थ या शब्दों का बाद में बताया जाएगा, आप पहले उच्चारण करिए, तो भी इनमें इतनी शक्ति है, इतने पवित्र हैं कि आपकी चेतना को पवित्र करते हैं। गीता और भागवत जो है इनमें भगवान ने अपनी पूरी शक्ति डाल दी है, तो इनके श्लोक जो है प्रभुपाद जी ने नियम बनाए कि उच्चारण करो, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, मनुष्य को चाहिए कि ऐसे महापुरुषों के चरणारविंद में समर्पित हो जो वास्तविक दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकें, प्रणिपात है समर्पण करना है। तो समर्पण कैसे करना है, ग्राम में पशु, गांव का जो पशु है, जैसे प्रभुपाद ने तो यहाँ शूकर कुकर जैसे पशु बताए हैं, लेकिन ग्राम में पशु का मतलब वो भी होता है, जैसे गधे और बैल वो गांव के जानवर होते हैं तो ये अपवित्र नहीं होते हैं, सुअर और कुत्ता तो अपवित्र होते हैं, सुअर जो पालने वाले होते हैं वो बड़े निम्न स्तर के लोग होते हैं, सबर जाति जिनको बोलते हैं, और कुत्ते पालने वाले भी जो है बड़े निम्न स्तर के हैं, लेकिन जो गाय बैल गधे इनको पालते हैं तो ये जो है उतने, खैर गाय पालना तो बहुत ही पवित्र कार्य है, लेकिन गधे भी जो है जो पालते हैं धोबी जैसे पालता है तो उसको भी जो है उतना नीच नहीं माना जाता, अपवित्र नहीं माना जाता है। तो ये ग्राम में पशु जो है ऐसे होते हैं जो कि समर्पित होते हैं, अपने स्वामी को समर्पित होते हैं और अपनी रक्षा का भार वो जो है अपने स्वामी के ऊपर ही डालते हैं, जो उनको अपनी सुरक्षा का खुद ज्ञान नहीं होता है, और जो है वो समर्पित इस तरह से भी होते हैं कि जो कुछ भी काम होता है वो सब काम करते हैं और उनको केवल चाहिए भोजन, घास चाहिए, इतना घास चाहिए। तो ये जो है मतलब भावना जो है मतलब ग्राम्य पशु की जो होती है उसी भावना में आप जो है समर्पण हुए तो ग्राम्य पशु। यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे महानुभाव महापुरुषों के चरणारविंद में समर्पित हो जो वास्तविक दिव्य ज्ञान प्रदान कर सके। इसलिए कहा गया है तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्। जो जीवन के उच्च आदर्श और महत्व को जानने का इच्छुक है, जीवन के उच्च आदर्श और महत्व, जीवन के महत्व को जानने का इच्छुक है। जीवन का महत्व क्या है, मनुष्य के जीवन का महत्व क्या है? तो आजकल की शिक्षा में जो है मनुष्य के जीवन का महत्व नहीं बताया जाता। मनुष्य के जीवन का महत्व क्या है आजकल की शिक्षा में? इंद्रिय तृप्ति, जितना अधिक हो सके इंद्रिय तृप्ति करो और जीवन को गुजारो, पास टाइम, टाइम पास करो। आजकल की शिक्षा क्या है, टाइम पास करने की कैसी कैसी अच्छी विधियां बताते हैं कि कैसे टाइम पास किया जाए और जिंदगी कैसे पास किया जाए। तो लोग इसको ही बड़ा मतलब बहुत बड़ा कार्य मानते हैं कि कैसे जिंदगी काट लें। तो बोलते हैं जिंदगी कैसे काटना है, जिंदगी कैसे काटना है, कैसे कटे जिंदगी, कैसे जिंदगी गुजरे, जिंदगी गुजारना है किसी प्रकार से। तो यह उनका बहुत बड़ा आदर्श है, बहुत बड़ा कार्य है। तो जीवन का महत्व नहीं जानते, जीवन का कितना महत्व। जीवन तो जिंदगी गुजर रही है, बहुत तेजी से गुजर रही है, बहुत तेजी गुजर रही है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि कितना अधिक अधिक हम लाभ उठा लें एक एक सेकंड का। जो महत्व जानता है वो ऐसे सोचता है कितनी जल्दी मेरी उम्र बीत गई है। जब जन्मदिन मनाते हैं एक साल, फिर वो याद दिलाया जाता है कि तुम्हारे जीवन के इतने साल बीत गए है ना, और मृत्यु कितनी जल्दी निकट आ रही है और आपको जो है कितना अधिक से अधिक लाभ उठाना है। तो लोभ होता है, तो जो लाभ जानता है जीवन का उसको लोभ होता है कि मैं कितना अधिक से अधिक लाभ उठाऊं। जैसे नोटों की वर्षा हो तो आपको जो है आप कैसे भागो, जल्दी जल्दी उठाओ उठाओ, जल्दी उठाओ, कितना अधिक से अधिक बटोर लो। उसी प्रकार से जीवन का जो है लाभ जो जानते हैं उनको लोभ होता है कि कितना अधिक बटोर लो मैं, है ना। और वो लाभ असली लाभ जो आपके साथ जाएगा तो हरिनाम है, भक्तों का संग है, श्रीमद् भागवत का श्रवण है, ये सब जो है जीवन का लाभ जो आपके साथ जाएगा। तो जीवन का महत्व जो जानना चाहता है, जो जानने का इच्छुक है, जीवन के कुछ आदर्श और महत्व को जानने का इच्छुक है, उससे क्या करना चाहिए? उससे चाहिए कि गुरु के पास पहुंचे और उनके शरण ग्रहण करे। आगे जो सचमुच ही अविद्या के अंधकार को दूर करना चाहता है उसे ही गुरु के समीप जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु का जो है केवल एक ही प्रयोजन है गुरु प्राप्त करने का, क्या? सचमुच अविद्या के अंधकार को दूर करना चाहता हो, यानी जो सचमुच महसूस करे कि मैं अंधकार में हूं। आप सोचिए, मान लीजिए कि आपको जो है बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा अंधकार में, बिल्कुल घोर अंधकार में है, तो आपको जो है मतलब कुछ चाहिए, कोई सहारा देने वाला चाहिए, किसी का हाथ का सहारा चाहिए है, या कुछ रोशनी चाहिए, कुछ रोशनी मिले तो कितनी आवश्यकता होती है। हो सकता है यहाँ आवश्यकता ना हो कि आप इसी मंदिर में रहते हैं तो कंट्रोल कंट्रोल करके आप जो है अपना काम कर लें, कुछ काम कर लें। लेकिन कोई ऐसी नई जगह हो जहाँ आप पहले कभी गए नहीं और वहां जाना हो आप कैसे अंधकार में, तो बहुत ही अंधकार भयानक होता है और कितना बड़ा संकट आपके सामने है, आगे है, पीछे है, आप नहीं जानते हैं। तो इसका जो डर है वो कितना ज्यादा होता है अंधकार में। तो उस अंधकार में जो है अगर आपको लगता है उसी प्रकार आप ऐसे अंधकार में, लेकिन कहां लगता है लोगों को, लोग सोचते सुरक्षित हूं, मैं तो सुरक्षित हूं, कहां अंधकार है? सब दिखाई दे रहे हैं, मेरे पिता हैं, मेरी माता है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मकान है, सब तो सुरक्षा है, कहां अंधकार है? तो फिर गुरु की आवश्यकता नहीं, तो गुरु की आवश्यकता नहीं है। तो बात कहते हैं गुरु की आवश्यकता कब है, जब आपको लगे कि मैं बहुत अंधकार में, घोर अंधकार में, घोर अंधकार अगर आप विचार करो तो घोर अंधकार में, आपको कुछ पता नहीं है कि कितने कितने जन्मों के बाद आपको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। इस मनुष्य के शरीर में भी अभी भी कौन सा संकट आने वाला है कुछ पता नहीं है, कितना बड़ा संकट आने वाला है, किस समय शरीर छूटने वाला है कुछ पता नहीं, और शरीर छोड़ने के बाद फिर कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं, कितने बड़े संकट में आप पड़ जाएंगे, कैसी योनि में जाएंगे, कितना कष्ट मिलेगा, और कौन आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा जब शरीर छूट जाएगा, आप कितने बड़े संकट में, तब आपको जो है लगेगा कि यहाँ कितना बड़ा अंधकार है। तो अविद्या कहाँ है? अंधकार। तो ये भौतिक जगत है, ये अंधकार का स्थान है, ये अंधकार का स्थान, अंधे तमसी, ये अंधकार, घोर अंधकार का स्थान है। तो इसमें जो गुरु हैं वो आपको जो है प्रकाश देते हैं, आपको नेत्र देते हैं, अगर आपके नेत्र हैं तो अंधेरे में आपको बहुत कष्ट है, और अगर मान लो अंधेरा है, आपका नेत्र नहीं है, नेत्र काम नहीं कर रहा है, तो बहुत कष्ट है। तो वो अंधेरा दूर करेंगे, ज्ञान का प्रकाश पैदा करेंगे, या ज्ञान का नेत्र देंगे, तो दोनों तरह से बताया जाता है कि आपके पास ज्ञान के नेत्र जो है नष्ट हो चुके हैं, और या फिर जो है नेत्र है लेकिन अज्ञान का अंधकार है, अज्ञान का अंधकार दूर करने के लिए ज्ञान दीप उद्दीपता है। तो आपको जो है आपका जो है लैंप है ज्ञान का आपके पास है, लेकिन आप जलाना नहीं जानते हैं, आपको जो है कोई व्यक्ति चाहिए जिसके पास ज्ञान का लैंप है, और वो आपके संपर्क में आएगा, वो अपने लैंप से आपके लैंप को जला देगा। तो ये जो है मतलब कितनी आवश्यकता है फिर विचार करना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु का केवल एक ही मतलब है, गुरु शब्द का केवल एक ही अर्थ है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ना तो भौतिक लाभ के लिए, ना ही किसी रोग से मुक्ति या चमत्कार प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। तो तीन जो गुरु के अर्थ हैं वो वास्तव में नहीं है। गुरु के पास कोई जाता है किस लिए? भाई मुझे कोई गुरु मिल जाए। किस लिए? भौतिक लाभ के लिए। व्यापार में बड़ा घाटा हो रहा है तो मुझे कोई गुरु चाहिए जो मेरा जो है लाभ, जिससे मुझे जो है मतलब भौतिक लाभ प्राप्त हो, पुत्र की प्राप्ति हो, पत्नी की प्राप्ति हो, घर मकान व्यापार इन सब चीजों में फायदा हो, ये लाभ वो लाभ, इसके लिए गुरु चाहिए। लोग ढूंढते हैं ऐसे गुरु, ऐसे गुरु ढूंढते हैं। तो प्रभु गुरु ये शब्द जो है इसलिए नहीं बना है, गुरु शब्द का जो प्रयोग है वो इन कामों में है ही नहीं, फिर आप गुरु शब्द का प्रयोग मत करिए इसके लिए। दूसरा क्या है? ना किसी रोग से मुक्ति पाने के लिए, कि गुरु चाहिए मुझको जो क्या करे, बीमारियां ठीक करे। तो जो आसन सिखाने वाले हैं तो उनको गुरु गुरु बनाते हैं, है ना, योगा गुरु। अब वो योग भी नहीं, वास्तव में योग का भी नाम देना गलत है, क्योंकि योग के अष्टांग आठ अंग होते हैं, उनमें से आसन जो है एक अंग है, तो वो आसन ही सिखाते हैं, या प्राणायाम एक अंग है, प्राणायाम सिखाते हैं, तो उसको गुरु बना लें, ना तो वो योग है, ना तो वो योग विद्या है, और ना वो उस व्यक्ति को गुरु कहते हैं। तो गुरु उसको कहते हैं जो आठ योग के आठों अंगों को सिखाए और समाधि तक पहुंचाए, भगवान की प्राप्ति कराए, उसे गुरु कहते हैं, और इसी को योग कहते हैं। जब आठों अंग का जो है आप पालन करें, और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और अंतिम जो अंग है वो क्या है? समाधि। समाधि तक आप जब पहुंचे तब आप जो है योग की जो सीढ़ियां हैं उनको जो है आप चढ़े। तो ना तो योग और ना गुरु, ये शब्द जो है इनके लिए इस्तेमाल होते हैं। आजकल जो है योग शब्द इसीलिए इस्तेमाल होता है, और गुरु का भी प्रयोग, गुरु शब्द का भी प्रयोग लोग करते हैं इन सब चीजों के लिए। तो रोग से मुक्ति पाने के लिए नहीं है गुरु, और तीसरा क्या है? यह चमत्कार प्राप्ति के लिए गुरु के पास है। यह चमत्कार, किसी के पास चमत्कार होते हैं, है ना, तो वो सोने की घड़ी देते हैं, या जो है कुछ सोना बना देते हैं, है ना, या भस्म राख बना देते हैं। तो भक्तिमय ठाकुर की जो फिल्म बनी है उसमें वही है जो फल्गु भगवान है, तो फल्गु भगवान का जो है ये दिखाया गया है। ऐसे करता है, पब्लिक जो है ऐसे भगवान है भगवान है, वो ऐसे करता है ऐसे, तुमको भी बड़ा मजा आता है लोग मुझे भगवान कह रहे हैं। गुरु तो है, गुरु तो बहुत छोटी बात है, वो भगवान लोग भगवान कहते हैं, उनको बहुत मजा आता है कि लोग मुझे भगवान है। ऐसे उन्होंने किया और जो है एक तांबे का जो है कलश उनके हाथ में आ गया, दे दिया, ऐसे किया, ऐसे पैसे आ गए, ऐसे डाल दिए, लोग बटोर रहे हैं भगवान भगवान भगवान। चमत्कार, चमत्कार को नमस्कार, तो भगवान गुरु तो बहुत छोटी बात है, तो भगवान बन गए। तो चमत्कार के लिए तो तीन चीजों के लिए गुरु शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं, गुरु के पास जाने का ये कोई ढंग नहीं है, तद्व ज्ञानार्थम, तद्व ज्ञानार्थम मनुष्य को चाहिए कि दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हेतु ही गुरु के पास जाए। दुर्भाग्यवश इस कलिकाल में ऐसे अनेक धूर्त गुरु हैं जो अपने शिष्यों को जादू दिखाते हैं, और ऐसे अनेक मूढ़ शिष्य हैं जो भौतिक लाभ हेतु ऐसा जादू देखना पसंद करते हैं। ऐसे शिष्य अविद्या के अंधकार से बचने के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताने में कोई रुचि नहीं रखते। क्यों आध्यात्मिक जीवन बिताने में रुचि क्यों नहीं रखते? हम ऐसे गुरु को नहीं चाहते हैं जो हमको ये नियम बताए है? कि ये छोड़ो वो छोड़ो, ये करो वो करो है? ये सब क्या चक्कर है? हमें ऐसा गुरु चाहिए जो हमको जो है ये फायदा दिलाए वो फायदा दिलाए और कोई नियमों का पालन ना करना पड़े, हमको ऐसा गुरु चाहिए। तो इस तरह से लोग जो है रुचि नहीं रखते आध्यात्मिक जीवन बताने में, कोई रुचि नहीं रखते। अरे हरे कृष्णा के लोग हैं, आध्यात्मिक जीवन बताते हैं, मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, जुआ नहीं, ऐसा नहीं, तो क्या इस जीवन में सुख क्या है? तो बेकार, सब पागल है, सबके सब जीवन का सुख ही छोड़ दिया। हमको तो ऐसा गुरु चाहिए जो सब कुछ कहो कहेगा भगवान बना दूंगा तुमको, 6 महीने भगवान बना दूंगा, हमको ऐसा गुरु चाहिए, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो 6 महीने भगवान बन जाएंगे। वाह देखो भाई, हरे कृष्णा वाले जो है रगड़ते रहते हैं, नाक रगड़ते रहते हैं, क्या मिलता है? तो हमको जो है हमको ऐसे गुरु चाहिए 6 महीने भगवान ही बना देंगे। तो ये तो उनको जो है आध्यात्मिक जीवन बताने में रुचि नहीं है, तो धोखा खाना चाहते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं भौतिक संसार ऐसे ही लोगों का, दो प्रकार के लोग हैं, धोखा खाने वाले लोग हैं, धोखा खिलाने वाले। तो आप धोखा खाना चाहते हैं, धोखा खिलाने वाला आपको मिल जाएगा। आप धोखा नहीं खाना चाहते हैं तो आपको जो है ऐसा भगवान गुरु भेजेंगे जो आपको जो है धोखा ना दे, भगवान का सही रास्ता बताए। तो आपके हृदय की जो है इच्छा पर निर्भर करता है कि आप धोखा खाना चाहते हैं या आप सही रास्ता पाना चाहते हैं। तो आपके अंदर सही रास्ता पाने की इच्छा है तो भगवान ऐसे व्यक्ति से मिला देंगे जो आपको सही रास्ता दिखलाएगा, धोखा खाना चाहते हैं। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, कहा गया है, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं अज्ञान के गहन अंधकार में उत्पन्न हुआ और मेरे गुरु ने ज्ञान के प्रकाश से मेरी आंखें खोली हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं। इसमें शब्द क्या है? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान तिमिर अंधस्य, अज्ञान रूपी अंधकार, तिमिर मन अंधकार, उसमें मैं अंधा हूं। अज्ञान तिमिर अंधस्य, अज्ञान के अज्ञान के अंधकार में मैं अंधा हूं, अंधा था। तो ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान के अंजन की शलाका से चक्षुर उन्मीलितम ये, जिन्होंने चक्षु मेरे खोले। तो अंजन की शलाका, शलाका जानते ना जो अंजन है, शलाका में लेकर के अंजन लगाया जाता है, जिन्होंने चक्षु उन्मीलितम उन्मीलित किए, निमीलन उन्मीलन, आंखें बंद हो गई और आंखें खुल गई, चक्षुरोन्मीलितम ये तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। तो ये जो है इसका अर्थ, श्लोक का अर्थ ये है, अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान के अंधकार में मेरी आंखें जो है अंधी हो गई, ज्ञान अंजन शलाकया। तो तिमिर का मतलब कभी कभी वो भी है रतौंधी, अज्ञान की रतौंधी से मेरी आंखें बंद हो गई, और अंजन से जो है वो खुल जाती हैं, आंखें खुल जाती हैं। रोग भी अज्ञान के रोग से मेरी आंखें बंद थी। अंजन जो है ऐसे ऐसे भी अंजन होते हैं, बड़े चमत्कारी अंजन होते हैं। तो ज्ञान का जो अंजन है वो इतना चमत्कारी है कि आंखें खोल दिया। आंखें बंद होने और आंखें खुलने में कितना अंतर है, कितना अंतर है। अभी आपकी आंखें खुली हैं तो आपको पता नहीं चल रहा है कि कितना आपको लाभ हो रहा है। जब आंखें बंद हो जाए तो कोई पट्टी बांधे जबरदस्ती, तब पता चलेगा कि कितना कष्ट है, कितना भय है, कितना खतरा है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इससे गुरु की परिभाषा प्राप्त होती है। गुरु की परिभाषा यह है क्या, अज्ञान अति मेरा अंधस्त है, ज्ञान आंजन से आ गया। क्या परिभाषा है गुरु? तो ये परिभाषा है कि जो अज्ञान की रतौंधी से अंधे नेत्रों को ज्ञान के अंजन की सलाका से खोल दे, खोल दे, है ना। नेत्र खोलना है ना, जब नेत्र खुलते हैं तो अपने आप आपको सब कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन तो फिर ये आपको बताना नहीं पड़ता है कि आपको आपको ये देखना है, आपको दिखाई देगा सब। गुरु तो केवल नेत्र देखता है, नेत्र खुलता है तो आपको सत्य का दर्शन होगा कि आप कौन है, भगवान कौन है, आपका भगवान के साथ क्या संबंध है, ये भौतिक जगत क्या है, है ना। तो फिर ये कोई ज्ञान थोपने वाली बात नहीं होती थी, आपके ऊपर ज्ञान थोपा जा रहा है ना। ये कृष्ण भावना व्रत का जो ज्ञान है ये ऊपर से कोई थोपा नहीं जाता है कि नहीं ये मानो तुमको, ये तुम मानो तो है और नहीं मानो तो नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके जब नेत्र खुल जाएंगे तो आप स्वतः अनुभव करेंगे कि आप कौन है, कृष्ण कौन है, कृष्ण के साथ आपका क्या संबंध है। तो नेत्र खुलने वाली बात होती है, अनुभूति जो है जब होती है ज्ञान की, तो फिर ये नहीं होता कि भाई हम मानते हैं तो होता है और नहीं मानते तो नहीं होता, ऐसा नहीं है। अब मेरे सामने श्रीमद् भागवत की पुस्तक रखी हुई है तो थोड़ी है कि मैं मानता हूं, मानो तो है और नहीं मानो तो है, मेरी आंखों के सामने से मानने ना मानने वाली बात नहीं है। जब तक आंखें बंद हैं तो फिर मैं कह रहा हूं हाँ, अगर मैं मानता हूं तो श्रीमद् भागवत की पुस्तक मेरे सामने खुली है, अगर नहीं मानता हूं तो नहीं खुली। तो अगर आप मानो तो कृष्ण है, कृष्ण ईश्वर है, और ना मानो तो नहीं है। तो जब आंखें बंद होती हैं तो फिर मानने और ना मानने वाली बात होती है, जब आंखें खुली हैं तो फिर मानने ना मानने वाली बात नहीं होती है? अगर कोई कहता है कि हम नहीं मानते तो कैसे नहीं मानते, तुम्हारी आंखें बंद हैं। तो गुरु क्या करता है, आंखें खोलता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अविद्या के अंधकार में है, अतः हर एक को दिव्य ज्ञान से प्रकाशित होने की आवश्यकता है। ये भौतिक जगत ऐसा है, ये भौतिक जगत कैसा है, तमसो मां ज्योतिर्गम है, ये अंधकार का स्थान है। हर कोई जो है अंधा है, अंधकार में अंधा है। ज्ञान दिव्य ज्ञान से प्रकाशित होने की आवश्यकता है। सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्य को प्रकाश प्रदान करके इस संसार के अविद्याजनित घन अंधकार से उबार लेता है। तो सच्चा गुरु यह है। तो यहां पर प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब इस श्लोक को हम फिर से समझेंगे। यहां पर इस श्लोक में राजा चित्रकेतु जो कह रहे हैं ये एक बहुत मतलब शिष्टाचार है। तब कोई व्यक्ति शिष्ट माना जाएगा जब अपनी स्थिति को वो ऐसा समझे और जो है जो अपने से ज्यादा आगे भक्त हैं उनका सम्मान करे, तब ये शिष्टाचार माना जाता है। और शिष्टाचार सीखना बहुत जरूरी है और इस तरह से बोलना भी जरूरी होता है। तो अगर भक्तों का संग करते हैं, हम लोग श्रीमद् भागवत सुनते हैं, तो हम जो है सम्मान कर सकेंगे जो अपने से आगे बढ़े हुए भक्त हैं या जिनको आपसे ज्यादा अनुभव है, अब उनका सम्मान कर सकेंगे और आपको शब्द भी ऐसे बोल सकेंगे। तो ये शब्द जो है मतलब अगर कोई व्यक्ति नहीं बोलता और नहीं बोलना जानता है तो वो जो है वास्तव में क्या है, वो अशिक्षित है। उसको जो है मतलब प्राकृत, उसको प्राकृत भक्त कहा जाता है, क्योंकि सम्मान नहीं करता, सम्मान करना नहीं जानता, उसे सीखे ही नहीं कि कैसे सम्मान करना है या प्रशंसा करना है, भक्तों का गुणगान करना है ना। और अपनी जो स्थिति है उसको बहुत गिरी हुई समझना, अपनी स्थिति को बहुत गिरी हुई बताना। तस्मा दिवाम ग्राम में पशु, तो मैं जो है ग्राम में पशु हूं और आप मेरे पास आए हैं, तो आपने बहुत बड़ी कृपा करी है। जो ग्राम में पशु है वो तो कहीं जाता नहीं है, कोई उसकी रक्षा के लिए आ जाए तो वो अपनी दया से आ जाए। अगर वो पड़ा हुआ है संकट में तो वो तो बुलाना भी नहीं जानता, तो मैं ऐसा हूं तो मैंने आपको बुलाया भी नहीं और आप आ गए, तो मैं कैसा हूं? ग्राम में पशु। तो पशु जो है, एक तो जंगली पशु होते हैं जो हिंसक होते हैं, जंगली पशु होते हैं, हिंसक पशु होते हैं तो बड़े खतरनाक होते हैं, है ना। तो मैं वैसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं, है ना। और दूसरे ग्राम में पशु भी होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, बड़े अशुद्ध होते हैं, कुत्ते सुअर, ना तो वो बहुत अपवित्र हैं, तो मैं वैसा भी नहीं हूं। दूसरे प्रकार से हम समझें तो मैं कैसा हूं? ग्राम में पशु, ग्राम में पशु ऐसे हैं जो समर्पित होते हैं और उनसे सेवा आप जितनी ले सकते हो ले लो, तो ऐसे ग्राम में पशु बनना है जिनको कि मूर्ख तो होते हैं लेकिन वो जो है समर्पित होते हैं। सैव गोखरा, भगवान ने कहा ना श्रीमद् भागवत में, सैव गोखरा, गधे और बैल। गो का मतलब बैल भी होता है, गाय भी और बैल भी। अगर पुरुषवाचक बनाना है तो आपको क्या कहें? बैल की तरह। मूर्ख हैं लेकिन बैल की तरह या गधे की तरह, गोखरा, सैव गोखरा, अपने शरीर को ही जो है आत्मा समझते हैं। तो मूर्ख तो हैं लेकिन क्या है? समर्पित तो हैं, समर्पित तो हैं, है ना। तो ऐसे जो है जो गधे और बैल होते हैं तो ये सेवा बहुत करते हैं, सेवा जितनी कराओ उतनी सेवा करेंगे, और केवल उनको चाहिए अपना दाना घास कुछ जो है उनको चाहिए और बाकी सेवा करते हैं। तो गधा जो है इस मामले में गधा होता है कि अपने स्वार्थ को नहीं जानता लेकिन वो धोबी का स्वार्थ पूरा करता है, है ना। तो मैं अपना स्वार्थ नहीं जानता, तो कोई शिष्य भी जो है गधे की तरह अगर समर्पित हो तो वो क्या उसका गुण है कि आप गधे की तरह समर्पित हो, आप अपना स्वार्थ नहीं जानते लेकिन गुरु की सेवा में लगे हुए हैं, तो गुरु जो है आपसे सेवा ले रहा है तो आप कोई विरोध नहीं करते, है ना। तो वो अच्छा है गधे की तरह बनना, मूर्ख तरह, है ना। ये माया के गधे मत बनो, कृष्ण के गधे बनो। माया के गधे बनोगे तो भी है अधिक से काम लेगा, है ना, और कुछ नहीं मिलेगा, लाते खाने को मिले। माया के गधे बनोगे, कृष्ण के गधे बनोगे, है ना, तो कृष्ण तो बहुत कृपा करेंगे, कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होगी, है? तो उसमें तो सब सब कुछ, सब प्रकार के सुख हैं, सब प्रकार के। तो गधे और बैल की तरह जो है ग्राम्य पशु, मैं जो है ग्राम्य पशु हूं, मम मूढ़ है धिया प्रभु, मूढ़ थी ना, तो मेरी जो बुद्धि है वो बिल्कुल मूढ़ है ना, तो मैं अपने स्वार्थ को नहीं जानता। प्रभु, आप दोनों प्रभु हैं। तो कभी कभी दो व्यक्तियों से भी ज्ञान लिया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही गुरु हो, शिक्षा गुरु जो है कई भी हो सकते हैं, आप समझे। तो कई बार जो है हम लोग भक्तों का संग मांगते हैं तो शिक्षा जो है हम कई भक्तों से देते हैं, और दीक्षा गुरु को हो सकता है इतना समय भी ना हो कि आपको वो जो है कुछ शिक्षा दे पाए, है ना। तो इसलिए इनका भी महत्व होता है कि हम जो है शिक्षा लेते हैं, भक्तों से शिक्षा लेते हैं। तो द्विवचन है यहां, अंधे तमसि मग्न से ज्ञान दीपो धीरेताम। तो अंध तम जो है घोर अंधकार में, चूंकि मैं डूबा हुआ हूं, डूबा हुआ हूं, ज्ञान दीपो धीरेताम, तो घोर अंधकार में डूबा हूं, इतना अंधकार है कि कुछ इसका अंत ही नहीं है, कितना अंधकार है, लेकिन वो ज्ञान का दिया अगर जल जाए तो अंधकार क्या होगा? दूर हो जाएगा, है ना। तो उसमें कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा कि अंधकार को भगाना है, मारना है, काटना है, कुछ ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है, है? बस केवल दिया जला, आपके हृदय में ज्ञान का दिया पहले से है, केवल जलाने की आवश्यकता है, और जिसका ज्ञान दिया जल रहा है उसके संपर्क में आप रहिए, समर्पित होइए, है ना। तो संपर्क से क्या होता है, प्रज्वल हो जाता है, दिया प्रज्वल हो जाता है। तो ज्ञान दीप उदीरिताम, मम मम का मतलब मेरा, यहां पर मम लिखा है ना शब्द मेरा, तो मम ज्ञान दीप उदीरिताम, मेरा ज्ञान का दिया बुझा हुआ है ना। और बुझा कैसे ज्ञान का दिया, हवा, कौन सी हवा, इसमें विषय भोग, आप भोगना चाहते हैं संसार, संसार को भोगना चाहते हैं, माया को भोगना चाहते हैं, तो वही हवा है जो कि आपके ज्ञान के दिए को बुझा देती है। अब आपको जो है अपना न तो भगवान के साथ संबंध पता है, आप क्यों आए, कहां से आए, आपने भगवान की सेवा छोड़ी, भौतिक संसार में आए, कब आए, क्यों आए, कैसे आए, कहां से आए, कुछ पता नहीं है ना। पिछली गति का पता है कि आप पिछले पहले आपकी क्या गति थी, आगे भी क्या गति होने वाली है, कुछ पता नहीं। ज्ञान का दिया बुझ गया, और ज्ञान का दिया जल जाए तो आपको आगे पीछे का सब ज्ञान हो जाए कि आपने जो है भगवान के साथ संबंध है, आपने क्यों तोड़ा, आप कैसे जोड़े हैं दोबारा भगवान से, कैसे संबंध कैसे जोड़े हैं, और कैसे जो है आप आगे बढ़ें, अपराधों से कैसे बचें, ऊंचा नीचा गड्ढा कहाँ है, कैसे बच के चलें, बड़ा खतरनाक जगह है, कहीं पर जो है बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं, कहीं पर कांटे हैं, तो आपको कैसे बच करके चलना है, अपराधों से कैसे बचना है। तो केवल ज्ञान का दिया जल जाए तो आपको जो है सब कुछ पता चलता जाएगा, लेकिन वो ज्ञान का दिया जो है जलता रहे। तो जो गुरु होते हैं तो ज्ञान का दिया हमेशा जलाते रहते हैं, और आपके ज्ञान का दिया बुझता रहता है तो बार बार आपको जो है वो शिक्षा देते रहते हैं कृष्ण भावनामृत की, तो ये भी जरूरी। गीता भगवान कहते हैं यथा दीपो निवातस्थो निंगते सुकुमाय संपदा, जैसे दिया होता है तो जब हवा ना हो, हवा वायु रहते स्थान में वो जो है दिया क्या है, प्रकाश पैदा करता है। अगर हवा नहीं चलती है तो दिया प्रकाश पैदा करता है, हवा चलती है तो या तो बुझ जाता है, अगर नहीं बुझता है तो भी प्रकाश पैदा नहीं करेगा कि नहीं, क्योंकि उसकी लौ हिलती है तो फिर आप उसमें कुछ भी काम नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं देख पाएंगे, लौ हिलती नहीं है। तो निवातस्थ हो तो जो है दिया ऐसा हो जिसमें कि हवा हवा बिल्कुल न चले, हवा चाहिए उसको। लालटेन में जो है क्या होता है, वो शीशा होता है उसमें छेद नीचे से होते हैं तो हवा उसको चाहिए, लेकिन जो है सीधे हवा नहीं चाहिए, उसको लौ को जो है वो हिले, उसकी लौ ना हिले। तो इस तरह से जो है मतलब जो आपकी ज्ञान का जो दिया है तो उसमें विषय भोग कुछ मात्रा में चाहिए, शरीर की रक्षा के लिए चाहिए, तो हवा की तरह है, लेकिन इतना विषय भोग ना हो जो कि आपके ज्ञान के दिए को हिला दे, उसकी लौ को हिला दे। तो ये सब जो है रेगुलेटेड लाइफ में लगे लालटेन, तो ज्ञान दीप का मतलब है ज्ञान की लालटेन, मेरी लालटेन जो घुस गई है आप जला दीजिए लालटेन, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत शब्दों में जो है बहुत गहराई है और बहुत मार्मिक भाव है। तो ये जो बात है ये आपकी ही है, ये कहानी आपकी ही है, अपनी कहानी है, ये नहीं है कि भाई आप किसी की कहानी सुन रहे हैं क्योंकि पहले कोई ऐसा व्यक्ति हुआ है, ये भी है, इतिहास भी है, एक क्षेत्र के दो राजा थे, इतिहास है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन अगर देखा जाए तो ये आपके साथ भी एक घटना घटित हुई, स्थिति तो आपकी भी वैसे ही है कि नहीं, तो आपको भी जो है इसी प्रकार से चलना है, राजा चित्र के रूप के चरण चरणों पर चलना है, ठीक है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न, कोई चर्चा, बहुत रोचक विषय है, या तो मैं प्रश्न करूं ठीक है, मैं प्रश्न करता हूं। तो यहां पर महाराज चित्रकेतु अपने को ग्राम में पशु कह रहे हैं, है ना, तो ग्राम में पशु, तो कितने प्रकार के ग्राम में पशु होते हैं कौन बताएगा, दो प्रकार के, कौन कौन से, दो प्रकार कौन कौन से हैं, पवित्र हैं और दूसरे अपवित्र हैं। पवित्र हैं गधे बैल जो है पवित्र हैं और जो है वो अपवित्र हैं सुअर है ना। तो अपने को जो है कुत्ता सुअर समझना ये भी एक विनम्रता है जैसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। लेकिन दूसरा अर्थ ये भी है कि आप वो मत बनिए, कुत्ते सुअर जैसे मत बनिए, आप कैसे बनिए गधे और बैल की तरह गुरु या साधु के समक्ष जो है आप समर्पित हुए कैसे गधे और बैल की तरह है ना। तो गधे बैल की तरह जो है लोग समर्पित हैं, अब माया के गधे और माया के बैल बनोगे तो जो है परिश्रम ही परिश्रम मिलेगा और क्या मिलेगा लाते हैं नहीं। तो ग्राम में पशु है ना, तो ग्राम में पशु के विषय में हमने और भी चर्चा की थी गधे बैल में मतलब अपना स्वार्थ तो नहीं जानते लेकिन अगर वो गुरु साधु की सेवा में लगे हैं तो बहुत बड़ा गुण माना जाता है। क्यों गुरु साधु की सेवा में अगर गधे बैल की तरह आप लग गए तो बहुत बड़ा गुण माना जाएगा। क्यों कौन मिला समर्पित समर्पित होते हैं जितना काम लेना चाहो लो, अगर आप नहीं खिलाते हो तो भी शिकायत नहीं करते थे ऐसे आप जो है समर्पित होंगे। और वो अपने स्वार्थ को नहीं जानते कि आपने मुझसे इतना काम लिया तो इतना मुझे चाहिए, वो उसकी ये गणना नहीं होती गधे बैल की गणना नहीं होती। तो आप गधे बैल बनो बुद्धिमान मत बनो। जो बुद्धिमान होता है नौकरी ओवर टाइम एक घंटा ओवर टाइम चाहिए मुझे पैसा चाहिए कितना आप जो है मुझे पैसा दे रहे हैं और मैं कितना काम कर रहा हूं उसका जो हिसाब किताब पूरा होना चाहिए। गधे बैल का ये हिसाब किताब नहीं होता। तो आपको क्या बनना है गधे बैल की तरह बनना है कि जितना काम लेना लो और मुझे आवश्यकता है केवल सुरक्षा की कुछ खाने की वो जो है आप पूरी करते रहो खुश। अगर नहीं दिया तो खुश तो दुखी होता है फिर शिकायत कुछ भी नहीं करता। तो आप गधे बैल की तरह रहो। कई बार अन्याय भी होता है आपके साथ अन्याय भी होता है तो गधे बैल की तरह जो अन्याय सहन कर लेते हैं और सेवा फिर भी करते रहते हैं। तो गधे बैल की तरह ये गुण है गधे बैल का गुण है। जो नौकरी है नौकर होता है तो वो नौकरी करते हैं कुछ बोल दिया छोड़ दो नहीं करना नौकरी आज थोड़ा ऐसा 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 बोल दिया आज लेट क्यों आए ऐसा आपने क्यों बोला मुझे काम नहीं करना गधा बैल नहीं बोलेगा। तो आप गधे बैल की तरह बने ग्राम में पशु और ज्ञान दीप जो शब्द है तो इसमें कितना मतलब अर्थ है क्या क्या बातें हैं कौन बताएगा ज्ञान दीप के विषय में कौन बताएगा हाँ दीप से दीप जलता है उसी प्रकार से क्या होता है और हर जीव के साथ अपना अपना एक ज्ञान दीप है लेकिन अंतर क्या है बुझा हुआ है। और जब बुझा हुआ है तो होने और ना होने में कुछ अंतर नहीं है। और जब जल जाए है ना तो संपर्क चाहिए संपर्क की आवश्यकता दूरी रखने से फायदा नहीं होगा। हमें जो है गुरु साधु हमें संग करना है साधु संग संग का मतलब क्या है संपर्क कॉन्टैक्ट और हमेशा कॉन्टैक्ट में रहें तो हमेशा जलता रहेगा। अरे आपने कॉन्टैक्ट से दूर हो गए और हवा में आ गया आपका दिया तो गुजर तो जिनका दिया हमेशा जलता रहता है उनके संपर्क में रहेंगे तो आपका भी दिया जलता रहेगा। तो साधु संग हमेशा चाहिए ज्ञान दीप उदीर्यताम। तो कुछ ये बातें हैं मूढ़ धिया इसमें क्या भाव है हां मूर्ख आपको मूर्ख बनना बुद्धिमान नहीं बनना जैसे गधे गधे हैं बैल हैं तो मूर्ख होते हैं तो जैसे चलाओ वैसे चलते हैं है जी बुद्धिमान बुद्धिमान बनना है लेकिन किस तरह से बुद्धिमान बनना है कि आप अगर नहीं जानते हैं तो आपको जैसे बताया जाए जैसे अंधा व्यक्ति है अंधा व्यक्ति अगर बुद्धिमान होता है तो जैसे आंख वाला उसको चलाता है वैसे चलता है तो बुद्धिमान तो उसको अपना कुछ ज्ञान नहीं है जब तक आपकी आंखें नहीं खुली हैं तब तक आपको जो है नियमों का पालन करना आदेश का पालन करना ठीक है ना बुद्धिमान बनने का मतलब यही होता है कि आप नियमों का पालन करें आदेश का पालन करें और जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो अपने को बुद्धिमान समझता है इसलिए जब उसको कहा जाता है ऐसे तो वो ऐसे नहीं करता वैसे करता है ऐसे नहीं वैसे आप वो कहेंगे वैसे नहीं वैसे नहीं ऐसे तो वो बुद्धिमान बनता है तो वास्तव में जो मूर्ख बनता है अपने को मूर्ख समझता है वो बुद्धिमान आपको मूर्ख बनना नहीं है ये मूर्ख समझना आपने को आप सुनिए मूर्ख जो है मूर्ख नहीं बनना कि मैं मूर्ख बन जाऊं आपको तो ज्ञान का दिया चाहिए तो क्या आपको तो दृष्टि चाहिए ना ये मतलब नहीं होता है कि मैं मूर्ख बनूं और मूर्ख बना रहा हूं ये नहीं मतलब है आप अपना ज्ञान दिया का दिया जलाइए और दूसरों के ज्ञान का भी दिया जलाइए अपने को समझना है मूर्ख हाँ जी ज्ञान विज्ञान में क्या अंतर है बड़ा अच्छा प्रश्न कौन बताएगा ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है हाँ जब प्रैक्टिकल करते हैं अनुभव करते हैं तो विज्ञान ये ज्ञान है आपको जो है आदेश दिया गुरु ने तो ये भी एक ज्ञान होता है कि भाई कृष्ण भगवान है आपने जो है मतलब थ्योरी जान ली लेकिन जब आपकी आंखें खुली तो आप खुद देखेंगे कि कृष्ण भगवान है तो जब आंखें खुल जाती हैं तो आप देखते हैं अब ये ज्ञान है हाँ आप मुझे कहते हैं कि प्रभु जी आपके सामने श्रीमद् भागवत की पुस्तक खुली है अब मैं देख नहीं सकता हूं तो मुझे आपने ज्ञान दिया लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो ये विज्ञान है प्रैक्टिकल इसको विज्ञान कहेंगे तो जब तक आपको जो है विज्ञान नहीं प्राप्त हुआ तब तक आप ज्ञान जो है आप प्राप्त करते हैं गुरु से गुरु हैं साधु हैं आपको ज्ञान देते हैं और विज्ञान भी वही देते हैं कि आपने मेरी आंखें खोली चक्षुदाना दिलो जय जिन्होंने मुझे चक्षुदान दिया तो आंखें खोली तो ये विज्ञान है जब तक आंखें नहीं खुली तब तक वो ज्ञान है कि आप पालन करते हैं आदेश का पालन करते हैं मानते हैं सुनते हैं श्रीमद् भागवत ने ये बातें बताई गई है ना ये सत्य है तो ये श्रद्धा है आपके आपके अंदर ये श्रद्धा होनी चाहिए तो इसको ज्ञान कहते हैं है ना ज्ञान का मतलब अमानित्वम मदम्बित्वम अहिंसा अशांति ज्ञान के जो है 20 स्तर भगवान तीर में कहें बताए तो कहां से शुरू होता है ज्ञान अमानित्वम अमानित्वम सबसे पहला ज्ञान क्या है अमानित्वम यानी अभिमान नहीं करना अभिमान करने का कारण ही कहा क्या है कि कितने आप संकट में पड़े हुए हैं और आप कुछ जानते भी नहीं कितने संकट में आपने पड़े और आपने कितने दुख पाए हैं आप ये भी नहीं जान सकते कितने दुख पाए असीम दुख पाए अभिमान किस बात का अमानित्वम अदम्बित्वम दिखावा नहीं करना दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा जानकार हूं मैं बहुत बड़ा भक्त हूं दिखावा नहीं करना अदम नहीं करना तो ज्ञान जो है इस तरह से सीढ़ियां चलती जाती हैं ठीक है ना हाँ जी अच्छा इनका एक अलग प्रश्न है कि जो जानवर हैं अगर भक्ति के हाँ देखो ऐसा है कि कोई पशु के रूप में भी अगर किसी भक्त के घर में है पशु के रूप में, तो उसका पिछले जन्म का कुछ संस्कार ऐसा है कि उसको भक्ति घर में उसको स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। भक्ति विनोद ठाकुर तो कहे कीड़ा कीट जन्म, कीड़े के भी आप जन्म दो तो वैष्णव के घर में दो, तो कोई कीड़ा भी अगर वैष्णव घर में, साथ साथ ये भी कि उसकी चेतना भी ऐसी होनी चाहिए, आप समझे ना। मतलब कीड़ा ऐसे वैष्णव के घर में कीड़ा भी आप बन गए हैं कि आप विषयों में ही लगे हुए हैं तो नहीं है। जैसे कि हरण का भी शरीर प्राप्त हुआ जड़ भरत को, तो वो हरण की चेतना नहीं थी, वो चेतना काय की थी, अपने पिछले जन्म की चेतना थी हरण। तो कीट जन्म भी अगर मुझे मिले तो वैष्णव के घर में, कि मुझे ये चेतना हो कि हाँ ये वैष्णव का घर है, आप समझ रहे हैं। तो कीड़े की चेतना नहीं चाहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, जब वो कहते हैं कि मुझे कीड़े का जन्म मिले, मुझे ब्रह्मा का जन्म नहीं चाहिए जो कि आपसे विमुख हो, तो ब्रह्मा का कभी शरीर मिले आपकी चेतना नहीं, आपकी चेतना में ना हो तो क्या फायदा, पद तो बहुत ऊंचा मिल गया ब्रह्मा का, ये चेतना आपकी है विषयों में मेरी, तो नहीं चाहिए। कि कीड़े कीड़े का जन्म मिले, जिसकी चेतना विषयों में ना हो, चेतना किस में हो कि मैं वैष्णव के घर में हूं, आप सुन रहे। जो कीड़ा होता है तो वो तो कीर्तन भी नहीं सुन सकता, कीर्तन भी अगर वैष्णव घर में कीर्तन भी होता है तो कीर्तन भी नहीं सुन सकता, उसकी वो चेतना भी नहीं होती है कि वो कीर्तन सुन पाए। बहुत से कीड़े ऐसे होते हैं उनकी सुनने की शक्ति होती नहीं है, चाहे जितना भी आप करो तो वो जो है सुन करके उनको पता नहीं चलेगा कि कुछ है, कुछ फर्क पड़ता है, वो चलते जा रहे हैं। जब तक कि उनको आप छूते नहीं तब तक आप उनको पता नहीं चलता, तो ऐसे क्या फायदा। इस तरह से जो है हमें वास्तव में चाहिए चेतना, है ना, कि वो जो है कुलशेखर महाराज ने प्रार्थना की है कि दिवा भविवा ममास्तु वासो हरके वानर कांतक प्रकाम अवधोर सारदार बिंदो चरणोति मरण की चिंता, कि चाहे मैं नरक में रहूं, चाहे पृथ्वी में रहूं, चाहे स्वर्ग में रहूं, लेकिन आपके चरणों का चिंतन करूं जहां भी हूं। तो जो मुख्य जो प्रार्थना होती है भक्ति की होती है कि कृष्ण के चरणों का चिंतन हो, है ना, यानी वही ज्ञान दीप अगर जलता रहे मेरा आस का जो श्लोक है प्रार्थना है, ज्ञान दीप अगर जलता रहे तो कीड़े का भी शरीर मिल जाए तो भी कोई शिकायत नहीं, और ज्ञान दीप बुझा है तो ब्रह्मा का भी शरीर मिल जाए तो बेकार है, आप समझ रहे हैं। तो मुख्य बात यह है कि मेरा ज्ञान दीप जलता रहे। वैसे तो ब्रजवास बहुत मतलब श्रेष्ठ है कि ब्रज में वास मिले, लेकिन अगर आप जो है नरक में भी हैं और चेतना अगर आपकी ब्रज की है, ब्रज की चेतना में हैं आप, तो वो ज्यादा अच्छा है कि ब्रज में हैं आप और चेतना है क्या विषयों की, आप सुन रहे। तो हमारी चेतना हो ब्रज की चेतना हो, वृंदावन की चेतना हो, तो नरक में भी अगर आप हैं वृंदावन की चेतना में तो वो ज्यादा अच्छा है। वृंदावन में रह करके भी चेतना गाएगी है विषय को, ठीक है ना। आप शुरू में हम मुक्त मान लेते अपने को, मूर्ख, अच्छा मूर्ख मैं समझा मुक्त, मूर्ख मान लेते हैं, बाद में मूर्ख नहीं मानते, बाद में मूर्ख नहीं मानते। हाँ नहीं, दोनों बातें। देखिए ऐसा है कि आप अपने को मूर्ख मत मानिए, क्योंकि आपको दूसरों का ज्ञान दीप जलाना है तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आप मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है, आप समझ रहे ना। इसलिए ये भी आपको समझना है, आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है आप दूसरों को दे रहे हैं, है ना, तो अपने अंदर श्रेष्ठता का भी भाव होना चाहिए कि आप श्रेष्ठ हैं, आपने प्राप्त किया है, आप समझ रहे हैं। इसलिए ईश्वरे तद्धीनेषु बालिशेषु दुःसचिता, भगवान के प्रति प्रेम करना और भगवान के भक्तों से मित्रता करना और ज्ञानी पर कृपा करना, प्रेम मैत्र कृपा, आपको कृपा करना है तो आप श्रेष्ठ हैं उनसे, आपको दया आनी चाहिए। इसको जो है पता नहीं, देखो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, आपको गौरव होना चाहिए इस बात पर, आप समझे कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, और इसको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है, ये कितना कष्ट में है, तो आपको दया आनी चाहिए, कृपा, तो आप कृपा करो, उपेक्षा, तो ईर्ष्यालु उसमें की उपेक्षा करो, दूर रहो, क्योंकि वो ज्ञान नहीं लेना चाहिए ईर्ष्यालु, तो वो भी नहीं है कि आप जो है अपने को ऐसे मूर्ख, क्योंकि प्रचार फिर कैसे होगा, प्रचार के लिए मध्यम अधिकारी के धरातल पर आना जरूरी है, उत्तम अधिकारी भी मध्यम अधिकारी के धरातल पर आते हैं, भोपाल जी मध्यम अधिकारी के धरातल पर थे नहीं, लेकिन उतर के आए, उत्तम अधिकारी भोपाल मध्यम अधिकारी धरातल पर उतर के आए, क्योंकि प्रचार करना जरूरी है, इसलिए वो मूर्ख बोलते हैं, फूल्स राष्ट्र, क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं प्रभुपाद जी, प्रभुपाद नहीं है, प्रभुपाद को ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन साथ साथ अभिमान भी नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान प्राप्त हुआ कहां से, ऊपर से आया है, तो प्रभुपाद कहते हैं कि मेरी कुछ भी योग्यता नहीं, मैंने कुछ बदला नहीं है, मैंने तो आपको दिया है, जो ऊपर से ज्ञान आया वही मैंने दिया है, मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं दिया, आप समझ रहे हैं, तो इस तरह से हमें जो है मतलब दोनों तरह से सोचना है, आप बस ज्ञान है, इसका जो सौभाग्य जो आपको प्राप्त हुआ है इसका भी आपको गौरव होना चाहिए, गर्व नहीं, गौरव, घमंड नहीं है कि मैं दूंगा नहीं, गौरव, मैं कितना भाग्यशाली मुझे प्राप्त हुआ, मुझे कितना भाग्यशाली, लेकिन मुझे नहीं प्राप्त होना था, प्राप्त हुआ है वैष्णव की कृपा से, कृष्ण की कृपा से, मुझे नहीं मिलना था, मेरे प्रयास से नहीं प्राप्त हुआ, ये नम्रता भी हिस्सा है ना, लोगों को प्रदान करना है, संदेश देना है, प्रभुपाद की पुस्तकें बांटना है, तो साथ साथ आपकी ये चिंता भी होनी चाहिए, आपको ये कष्ट भी होना चाहिए कि दूसरे लोग कितने कष्ट में है, आपका प्रश्न और किसी का है? नहीं, उसको पता है महाराज चित्र के, तो पता है कि मैं अज्ञान में हूं, ये भी तो एक ज्ञान है, आप समझ रहे, जिसको पता है कि मैं अंधकार में हूं और इनके पास ज्ञान है, आप लोग ज्ञान है, आपके पास ज्ञान है और मैं अंधकार में हूं, तो भी तो एक ज्ञान है, जो बिल्कुल अंधकार में है उनको दिखाई दे रहा है कि मैं अंधकार में नहीं हूं, वो कितने अज्ञान में है कि वे अपने अज्ञान को भी नहीं देख पा रहे, आपको कितना ज्ञान प्राप्त हुआ, आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप अपने अज्ञान को देख पा रहे हैं, अपने को ज्ञान में समझना ये भी कितना बड़ा, कितनी बड़ी दृष्टि है कि कम से कम आपको इतनी आंखें तो खुली कि आपकी आंखें बंद हैं आप ये समझ पाए, ये भी तो आंखें खुलना है, उनकी तो आंखें इतनी बंद हैं कि उनको ये भी पता नहीं कि उनकी आंखें बंद हैं, अंधे व्यक्ति को जो है पता नहीं कि मैं अंधा हूं, वो कितना अंधा है, जो व्यक्ति अंधा है अपने को अंधा समझ रहा है तो कम से कम उसकी कुछ तो आंखें कम से कम इतनी है कि वो देख पा रहा है कि मैं अंधा हूं, और दूसरा व्यक्ति जिसके पास ज्ञान है जिसके पास आंखें हैं उससे मुझे दिशा लेनी चाहिए, तो कम से कम ये भी तो जो है उसकी एक चेतना है जो कि है उसके पास, ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा राधिका रमण भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय।